हरे कृष्ण जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी शोदानंदन प्रज जन रंजन यशोदानंदन प्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। కలియుగ పావన హరినామ సంకీర్తనకి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి శ్రీల ప్రభుపాదికి నిరంతరా శ్రీమద్ భాగవతంకి శిశిరాధ వృందావన చంద్రశేషి గౌరణ తాయికి ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుః ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం స అవధూతం పరిజనాసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశతారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। హరే కృష్ణ, ఆప్ సబ్కో స్వాగత హై భాగవత రసమాలన్ కి కక్ష మే। హమ్ లోగ్ భాగవత్ కే ప్రథమ స్కంద కే एक एक अध्याय करते आए हैं। आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 11वां अध्याय में, जिधर भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं वो हस्तिनापुर से प्रस्थान होकर अभी द्वारका के अंदर प्रवेश करने वाले ही हैं अभी इस अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ये भागवत के श्रवण करने से हमारे हृदय में जो भी मल पड़ा है, जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि, वो मिट जाएंगे और भगवान हरि के लिए प्रेमा भक्ति जागृत हो जाएगा। ऐसे भागवत के अंदर ही एक वचन दिया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो भागवत श्रवण करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे दिव्य प्रेमा भक्ति का संबंध भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण के साथ जो है उसको हम पुनर्स्थापित कर सके। वही एकमात्र लक्ष्य है भागवत पढ़ने का, श्रवण करने का। तो इस दुनिया में भगवान के पास अनेक लोग अनेक चीजों को लेकर मांगों को पूर्ति करने के लिए जाते हैं। ऐसे कभी कभी कुछ लोग मंदिर के नाम भी ऐसे दे देते हैं, इच्छा पूर्ति इष्ट देव है इस तरह से। लेकिन सबसे हमारे हृदय के गहराई में अंदर जाकर हम देखेंगे एक इच्छा है, प्रबल इच्छा हमारे अंदर क्या है, प्रेम भगवान को देना और प्रेम भगवान से स्वीकारना, प्राप्त करना। तो इसमें सब हमारे मांगों की पूर्ति अपने आप हो जाएगा अगर हम ये कर पाएंगे तो। जैसे एक छोटा बच्चा है अपने माँ बाप से उनको भी प्रेम करता है, खुद भी उनके प्रेम का भी पात्र बना है, क्या चिंता है उस बच्चे को, बोलिए आप कुछ चिंता नहीं है उसको है? उसको खाने की व्यवस्था करने की सोचना है क्या, उसको खाने पीने की व्यवस्था करना, मकान बांधने की व्यवस्था करना, एरोप्लेन में टिकट काटने की, नहीं तो अगर प्रवास करना हो तो क्या चिंता है वो बच्चे को, वो पूरा माँ बाप के ऊपर निर्भर है, तो माँ बाप के साथ आदान प्रदान करता है प्रेम का, माँ की सर्व वो माता पिता देख लेते हैं। तो भक्त का भी ऐसा ही स्थिति है, अगर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो बाकी किसी भी चीज के बारे में हमको चिंता करना नहीं है। ऐसे एक सुंदर श्लोक सुना हमने, सदा नाम लय बयता लाभे ते संतोष, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। ऐसे एक सुंदर श्लोक है, सदा नाम लय बयता लाभे ते संतोष। अगर आप हमेशा नाम लेते हैं, आज एकादशी हम लोग नाम ले रहे थे, तो एकादशी के दिन हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं नाम भगवान के, जितना हो सकता है उतना, तो हम सदा नाम लैब यथा लाभेते संतोष, अपने आप भगवान की कृपा से जो भी जीवन में मिल जाता है, जितना पैसा मिलना है मिल जाता है, तकदीर में जो लिखा है भगवान भेज देते हैं, उससे संतुष्ट जो रहता है व्यक्ति, लोभ नहीं करता है। दो चीज बताया गया है, हमेशा नाम लेता है, लोभ नहीं करता है, तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान की भक्ति में लगे रहता है, उसके लिए बताया गया इस श्लोक में, यही तो आचार करे भक्ति धर्म पोष। तो भक्ति मार्ग के धर्म जो है उसमें इसको पोषण मिल जाता है ये दो चीज से। भौतिक जीवन में हमें लोभी नहीं बनना चाहिए, जरूर जिम्मेदार होना चाहिए लेकिन लोभी नहीं बनना चाहिए, लोभ पाप का मूल है। और नाम लेते रहना चाहिए हमेशा, और नाम लेने के लिए प्रेरणा कैसे मिलेगा हमको, भागवत कथा श्रवण करके, भगवान की मधुर लीलाओं को हम सुनेंगे तो हमें नाम लेने की इच्छा विच्छा भी जग जाता है, हृदय पिघलता है, भगवान के नाम पुकारने की इच्छा भी जग जाता है इसे। तो इस तरह श्रद्धा शब्दे विश्वास को हे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ऐसे एक श्लोक है, श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब है मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ूंगा, ये मेरे जीवन में परम कल्याणकारी हो जाएगा, मेरा परम मंगलमय जीवन हो जाएगा, मेरा सब तरह के शुभता मेरे जीवन में आ जाएगा, और कृष्ण की श्री चरणों को छोड़कर हम किसी दूसरे चीजों में हम भटक जाएंगे तो हमारा मन विचलित ही होगा उन चीजों में। इस दुनिया में किस किस चीजों के पीछे लोग पड़ते हैं, कोई पैसा के पीछे पड़ता है, कोई स्त्री के पीछे पड़ता है, कोई मान सम्मान के पीछे पड़ता है, कोई फॉरेन चांस के पीछे पड़ता है, तो इस तरह अलग अलग लोग पीछे पड़कर उनको तृप्त नहीं हुए, करोड़पति बने, करोड़पति बनने के बाद भी तृप्त नहीं हुए। इसलिए भक्त को अटूट विश्वास है इस बात के ऊपर, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा मैं तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं कृष्ण की प्रेम प्राप्त करके जीवन में परम उच्च कोटि का लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा मैं, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो ये बात को श्रद्धा बोलते हैं, तो यही श्रद्धा दिखेगा आपको आज के इस सत्र में जो द्वारकावासियों में है। तो ये बहुत मधुर अध्याय है, ये भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, ये दसवां पढ़ लिया हमने इसको, ये तो हस्तिनापुर से प्रस्थान होकर द्वारका आए भगवान, सॉरी, तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य के बारे में वर्णन हुआ था, तो कृष्ण की द्वारका के प्रस्थान के तैयारी के बारे में पढ़ा हमने। ये पूरा किया क्या मैंने हस्तिनापुर की स्त्रियों द्वारा भगवान का गुणगान पिछली बार, हाँ पूरा किया, हाँ, क्योंकि ये जो कौरवेंद्र पुरस्त्री नाम सर्वश्रुति मनोहर है, ऐसे बताया है कि स्त्रियां जो ऊपर छत के ऊपर खड़े होकर फूल की वर्षा कर रही थी भगवान के ऊपर, वो लोग बहुत कुछ बात कर रहे थे लेकिन उसका संक्षिप्त रूप में इतना ही बोला उन्होंने। इधर जो सड़क में गए देख रहे हैं हम कृष्ण अभी इधर से निकल रहे हैं, स्त्रियों ने दूसरों स्त्रियों को पूछा तुमको मालूम है कौन है, बोले कि ये परम पुरुष है, और यही परम पुरुष महाविष्णु इनसे ही निकलते हैं, तो वो अपने दृष्टिपात मात्र से जीवों को, वो जो जीव इस दुनिया में आना चाहते हैं सह ऐक्षतः सह असृजता ऐसे उपनिषद में कहा गया है। भगवान इस दुनिया की सृष्टि करके निर्माण करके उन जीवों को इस दुनिया में डालते हैं अपने आंखों से देखकर, सह ऐक्षता, ऐक्षता मतलब देखकर अपने आंखों से उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वही भगवान इधर अभी कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, इधर शास्त्र बताते हैं इनकी गुणगान बताते हैं, तो वो बोल रहे थे कि ये साधारण नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, गुणातीत है, सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, षडैश्वर्य पूर्ण है। और इन्हीं के बारे में सुना आप लोगों ने, द्वारका में इनके 16,108 रानियां हैं, हरेक रानी को एक एक महल दिया है, बहुत इस तरह भगवान ऐश्वर्यों से पूर्ण है। लेकिन द्वारका से भी मथुरा से भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है ब्रज वृंदावन, क्योंकि उधर यही भगवान गाय बच्चनों के साथ खेलते हैं, अपने सह गोप बालकों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं। तो ब्रजवासियों को जो सौभाग्य मिला इस दुनिया में किसी जीव को नहीं मिला है। इस तरह ये स्त्रियां आपस में बात कर रही थी, इसलिए इनकी बातचीत जो प्रजल के समान दिख रहा था। अन्योन्नमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः, सब शास्त्र पुराण वेद उपनिषद इत्यादि से भी इनकी बातचीत एकदम मधुर था, क्योंकि वो सारे शास्त्रों के जो मर्म है सबसे गुह्य बात है उसको निचोड़ कर उसका जूस रस जो है उसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे। इसलिए स्त्रियों की गुणगान हुआ है भागवत के दशम स्कंद में, पहले स्कंद के दसवां अध्याय में, यही अभी बता दिया मैंने, इसका सारांश अभी बोल दिया आपको मैं। और भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं अभी। तो ये दसवां अध्याय हो चुका है, अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 11वां अध्याय में। ये पिक्चर देखिए, भगवान अभी प्रवेश कर रहे हैं द्वारका के अंदर, बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है आपको पीछे, है ना, और बहुत बड़े बड़े गोपुरम हैं, मंदिर हैं, और स्त्रियां नाच कर फूल बरसाकर स्वागत कर रही है, सूत मगध वंदिन है इत्यादि लोग आकर वो भी गाते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 11वें अध्याय के पहले पहला श्लोक इस प्रकार है। सूत उवाच आनर्तान स उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान स्वकान धद्मौ दरवरम तेषां विषादं शमयन्निव। पढ़िए अनुवाद।
सुत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारा द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों को निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया।
तो उसके पहले भगवान के शंख बजाने की बात आ रहा है, उसके पहले मैंने इधर देखा है कि भगवान द्वारका में बड़े राजा है, 16,000 रानियों के स्वामी है। देखिए सुदामा एक गरीब ब्राह्मण फटे कपड़े पहनकर पतले होकर हड्डी दिख रहा उसका, वो आ रहे हैं, भगवान भागते हुए आकर उसको आलिंगन किया। अपने ही राज सिंहासन में उसको बिठाकर उसके उसको अभिषेक किया और उसको आरती उतारा। भगवान की ये अर्धांगिनी रुक्मिणी जी वो भी चामर डुला रही थी और भगवान ने उनको बहुत अच्छा जन-जन परोसने के बाद उनको सुलाकर पाद संवादन करके उसके बाद अनेक दिन उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और सभा के अनेक जो नौकर चाकर सब लोग देख रहे थे कि ये गरीब ब्राह्मण कौन है। किम मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा, ये भिक्षुक जो है आया है ये कौन है, इतना भगवान इसको समय भी दे रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं, इतना प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं, तो अपने ही राजा द्वारकाधीश के संबंध में लोगों के मन में और प्रेम बढ़ गया ये देखकर। हमारे राजा बड़ा है फिर भी इनका पांव धो रहा है, सेवा कर रहा है ब्राह्मण की ऐसे है, क्योंकि महान ये भगवान के महान भक्त हैं सुदामा ब्राह्मण, क्योंकि दोनों गुरुकुल के मित्र हुए हैं पहले संदीपानी मुनि के आश्रम में अवंती में उज्जैन के पास है। तो इतना बड़ा भाग्यशाली था सुदामा, कृष्ण के साथ वो एक ही गुरुकुल में पढ़ा, दोनों साथ में जाकर जंगल में लकड़ी काट कर अपने गुरु माता के आदेश अनुसार काट कर लेके आने के लिए गए थे, लेकिन अचानक आई से बारिश होने लगा, बहुत जोरदार बारिश होने लगा, तो जंगल में दोनों फंस गए। कृष्ण पुकार रहे थे, सुदामा तुम किधर हो, सुदामा पुकार रहा था कृष्ण को, वही कहा ना आप किधर हो, तो अंत तो मिल पाए लेकिन रात को आ नहीं पाए, इतना पानी आ गया जंगल में। लेकिन बाद में अगले दिन सुबह इनके गुरु जी चिंतित हो गए, गए वो जंगल में, देखा दोनों बच्चों को, बोला उनको आलिंगन दिया, गुरु ने बोला कि अरे बच्चों, उन्होंने बोला अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्ते अति दुखिता नाना वै प्राणी नाम प्रेष्ट स्तमनादृत्य मत्पराह। गुरु जी बोलते हैं कि बच्चों आप इस तरह के शिष्य हो, अपने गुरु के लिए अपने शरीर को परवाह नहीं किया हो आप लोग, इतना कसरत किया हो और रात को पूरी रात अंधेरे में आप जंगल में ठहरे हो, वापस नहीं आ पाए, तो इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए आया था, लौट आ जाओ अभी, वो लेके गए। लेकिन बोला कि अस्मद अर्थे अति दुखिता, गुरु की खुशी के लिए आपने इतना तपस्या की है, तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। गुरु जी ने बोला इस आशीर्वाद प्राप्त करके आपको जो भी आश्रम में पढ़ा आपने उसका स्मृति हमेशा हो, स्मृति कभी भंग मत हो, और साथ साथ आपकी सब इच्छाओं को भगवान पूर्ति करे, ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको। तो कृष्ण और सुदामा, कृष्ण थे राजा द्वारका के और सुदामा थे ब्राह्मण, फिर भी गुरुकुल में जाकर दोनों इस तरह की सेवाएं करते थे, ये वैदिक संस्कृति है। आप राजा के पुत्र हो, एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र हो, दोनों गुरु के आश्रम में रहकर इस तरह की सेवा करते थे। तो ये 16,000 रानी को भगवान ने विवाह की, ये इनके ये हुआ था भौमासुर के कारागर में, उन्होंने 16,000 राजकुमारियों को रखा था ना, उनको उद्धार करके उनकी इच्छा अनुसार भगवान ने उन सबको विवाह किया और द्वारका के रानी अब बनी सब। अभी ये नारद मुनि द्वारका में भ्रमण करते हैं, इधर एक बार देखिए कितने महल देखे हैं, अलग 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 महल है, एक एक महल में जाते हैं, और जब नारद को बढ़ा ये अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है उनको। एक महल में भगवान यज्ञ कर रहे थे, इस तरह ब्राह्मण को दान दे रहे थे, और दूसरे महल में भगवान घोड़े में सवार होकर तलवार चला रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। एक महल में रानी रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहे थे, और एक महल में झूला झूल रहे थे, और एक महल में भगवान बैठकर अपने ही ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, हर महल में जो गए नारद मुनि तब भगवान तुरंत उठ जाते थे और नमस्कार करते थे, नारद मुनि को बोलते थे मैं कितना भाग्यशाली हूँ हे ब्राह्मण, कि नारद जी आप आए हैं मेरे महल में, उनको बिठा दे देते, उनको सेवा दे देते। तो दूसरा महल में जाते थे, उधर भी वही करते थे भगवान। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य लगा, और 16108 होने के बाद लास्ट में भगवान ने नारद को बोला, नारद इस दुनिया में धर्म को, धर्म की परिभाषा बोलने वाला मैं हूं, और मैं खुद ही धर्मपरायण होकर चलता हूं, और धर्म को लोगों के जीवन में लागू करने के लिए मैंने कानून बनाया है, धर्म बनाया है, जो पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलता है। तो भगवान ने बोला कि मैं खुद ही एक गृहस्थ बनकर गृहस्थ आश्रम को के धर्म को मैं पालन करता हूँ द्वारका में, लोगों को ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जैसे भगवान जल्दी उठ जाते थे सुबह प्रातः काल में, जब मुर्गी की आवाज होता था ना, कोकर को आवाज करता था मुर्गी, तुरंत सुनकर उठ जाते थे, जैसे 4 बजे उठकर नहाकर ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, सब करते थे भगवान। ऐसे अपने राजमहल में जाकर मंत्रियों को मिलना, शासन भी किया भगवान ने ऐसे। तो भगवान अपने आदर्श उदाहरण से सब लोगों को सिखाते हैं, एक इसलिए भगवान एक आदर्श बेटा बनते हैं देवकी वसुदेव के, यशोदानंद के, और एक आदर्श पति बनते हैं द्वारका में सब रानियों के, आदर्श मित्र बनते हैं उद्धव के और अर्जुन के ऐसे हैं, और इस तरह एक आदर्श राजा बनते हैं द्वारका में, और एक आदर्श देव बने पांडवों के, उनके उनके लिए हमेशा सहयोग किया। तो आप देखेंगे भगवान जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं, उसमें कुछ त्रुटि नहीं रहता उसमें। तो नारद मुनि इसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और सारे दुनिया में जाकर भगवान की गुणगान किया, उन्होंने घोषणा की। इधर 11वां अध्याय चालू हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। करेक्ट, पढ़िए पाला लाइन।
भगवान के दिव्य शंख की उद्घोषक ध्वनि सभी तरह के भय को दूर कर द्वारकावासियों का उत्साह वर्धन करती है।
हाँ, देखिए जब भगवान शंख बजाए ना, उसके बारे में ये दूसरा श्लोक में आता है। सर्वोच्च काशे दवलो दरो दरो अप्युरुक्रमस्याधरणा दरशोण शोणिमा दद्मायमान करकंज संपुटे यताब्ज खंडे कलहम सब उत्स्वन। तो ये शंकी के बारे में वर्णन आ रहा है इधर, कि जब भगवान अपने मुख में, अपने मुख कमल में शंख को रख कर तो बजा रहे थे भगवान, तब भगवान के ओंटों की लालिमा शंख के ऊपर दिखाई दिया। अभी आप देख रहे हैं ना, शंख तो सफेद रंग का है, लेकिन वो लालिमा छा गया है, कैसे? भगवान की ओंटों से। इसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, कि अगर आप एक लोहे को डालोगे आग में, वो लोहे तप जाता है ना, इसी तरह ये जो शंख था वो भी उसमें लालिमा आ गया उसमें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त जो होता है वो शंख जैसा है, भगवान के संपर्क में आकर भगवान की शुद्धता का लालिमा भक्त में भी आ जाता है, ऐसे बताते हैं, बहुत सुंदर बात। और ऐसा ही नहीं, इसके साथ साथ भक्त के जीवन के सब कार्यकलाप दिव्य बना देते हैं भगवान। है, उस भक्त के सब इंद्रियों को दिव्य बना देते हैं, उसके बोलना चलना फिरना सब कुछ दिव्य बना देते हैं भगवान, ऐसे उनके संपर्क में जो भक्त आता है, ये बताते हैं इधर। और तो कैसे उदिक रहा था बताते हैं, यह तो परपोर्ट, लास्ट लाइन पढ़िए परपोर्ट में, 4-5 lines। बाय आर्डेंट लव एंड डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड,
भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से, प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के ओठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है।
इधर बताया गया कि जैसे हंस पक्षी जो होता है मानसरोवर में रहती है, उधर पानी एकदम स्वच्छ होता है, निर्मल होता है वो पानी, और वो हंस का भी शरीर एकदम सफेद होता है उसका, और वो दूध ही पीता है हंस, इस तरह की वातावरण में वो रहता है वो हंस, इसलिए बहुत प्रसन्न भी है वो। इसके विरुद्ध कौवा जो है वो घेर बैठता है, कचरे के डब्बे में बैठता है, गंदा जो दुर्गंध आता है उस दुर्गंध आने वाले जो कचरे के डब्बे में जो चीजें हैं उसको उठाता है वो। इसके इसी तरह जो लोग सिनेमा देखते हैं और सिनेमा मैगजीन पढ़ते हैं वो कौवे के साथ तुलना किया है भागवत में ऐसे हैं। यत वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत्य शिक्षा, ऐसे बताया है। लेकिन भगवान के कैंकरी में जो लगता है वो हंस पक्षी के बराबर है, ऐसे उदाहरण दिया है। एक सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनी ब्राजिता, ऐसे एक श्लोक है, सद्भक्तावलि हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंद कलद्वनी वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तवलसद लीला कथा स्वर्धुनि। ये बोलते हैं कि जब गंगा आकाश से ये भूमि में आती है तो जैसे गंगा का प्रवाह जब भूमि में होता है उस गंगा को देख कर सब पंछियां खुश हो जाते हैं, जैसे ये जो हंस पक्षी है, बतख है, भ्रमर है, सब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जब बहती है उसमें अनेक कमल उगते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे कमल उगते हैं, तो उस कमल में भ्रमर आकर गूंजते हैं और हंस पक्षी भी उस पानी में आकर रहता है, बतख भी रहता है। तो हमारे आचार्य ने बोला कि ये कमल क्या है, जब भगवान की लीला कथा का कार्यक्रम किया जाता है, जैसे अभी हम लोग भगवान की गुणगान कर रहे हैं, तो ये भगवान की गुणगान को ही गंगा के प्रवाह से तुलना किया है। और जब इस तरह का कथा सुनते जाते हैं लोग, उस कथा से उनके मन में कमल जैसे भगवान के सुंदर स्वरूप नील कमल, अगर पानी से नील कमल उगता हो, इसी तरह भगवान के नीला श्याम वर्ण का रूप जब भगवान का शरीर का होता है, तो ऐसे सुंदर स्वरूप भगवान का स्वरूप कथा से प्रकट होता है लोगों के चित्त में। और भ्रमर आकर उधर गूंजते हैं ना जैसे, वो कौन है? रसिक भक्त है, जो इस भागवत कथा को प्रेम से सुनते हैं, भक्ति भावना के साथ सुनते हैं। और हंस पक्षी कौन है? वो शुद्ध भक्त है, जो निर्मल हृदय वाले हैं। और तथा परम हंसा नाम मुने नाम मलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्री है, कुंती महारानी बोलते हैं, निर्मल हृदय वाले आपको देखते हैं भगवान, आप प्राप्त होते हो उनको ऐसे। तो उनको हंस पक्षी से तुलना किया है, और ब्राह्मणों को रसिक भक्तों से, जो विविध भागवत के रस में रमते हैं। और बतख भी उधर तैर रहे हैं, बतख जो नवसिकिया भक्त हैं, तो नवसिकिया भक्त इस तरह आप देखेंगे वो नदी के प्रवाह में सब आनंद लूटते हैं, पंछी आकर आवाज भी करते हैं प्रेम से ऐसे। तो इस तरह का लीला कथा स्वर्धुनी ऐसे बोलते हैं, ये लीला कथा का गंगा का प्रवाह है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मेरे जो जिह्वा है, जो रेगिस्तान जैसा है, ऐसे बोल रहे हैं कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस रेगिस्तान में भी अगर भगवान का कथा का प्रवाह होगा तो ये इधर समृद्धि आ जाएगा, और इसमें भगवान की कथा प्रवाह से खुद को भी परमानंद और दूसरों को भी परमानंद प्राप्त होगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम कथा ठीक तरह से हम बोल पाएंगे ऐसे। तो इस तरह ये सुंदर उदाहरण दिया गया है। तमो पशुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्यहु प्रजा सर्वा वर्त दर्शन लालसाह। देखिए, जगत भय भयावहम, इस दुनिया के भय को दूर करने वाले, संसार भय को नाश करने वाले भगवान हरि, भगवान द्वारकाधीश अभी आ पहुंचे हैं इधर, इधर आए हैं, उनकी आवाज सुन लिया था उपश्रुत्य, वो उनके शंख का आवाज सुना, क्योंकि ये शंख का आवाज सुनते ही भय मिट जाता है ऐसे बताते हैं। ये बात है, जैसे मंदिरों में भी, कुछ कुछ घरों में भी आप सुबह शंख का आवाज सुनते हैं, जब शंख का आवाज एक परम मंगलमय वातावरण को पैदा करता है, शंख का ध्वनि जो बजाते हैं उस सारे वातावरण पवित्र हो जाता है। और अगर कुछ उधर भूत प्रेत पिशाच कोई निकट हो यह आवाज सुनकर वो भाग जाते हैं, उधर से निकट ही नहीं आते हैं। इस तरह मंगलमय वातावरण बना देता है, शुभ वातावरण को बनाता है और सुनने वाले को हृदय में अभय प्रदान करता है। जैसे पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे और अपने पांचजन्य शंख को लेकर भगवान ने जब बजाया है, उधर बताया गया है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ऐसे एक एक शंख का नाम बताया है उधर। और ये बता के हृदयानि व्यदारयत ऐसे बता गया, तो कौरवों के पक्ष में उनके हृदय चूर चूर हो गया ये आवाज ध्वनि सुनकर। क्यों? क्योंकि अशुभ चीजें चूर चूर हो जाते हैं और भगवान के भक्त जो होते हैं वो उनके अंदर साहस बढ़ जाता है भगवान के ये शंख का ध्वनि सुनकर। प्रभुपाद बताते हैं इसी तरह अगर कोई नाम लेता हो भगवान का नियमित रूप से रोज, उससे भी ध्वनि निकलता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। इस तरह हम नाम लेने से जो ध्वनि पैदा होता है वो ध्वनि भी हमें निडर बना देता है। जैसे एक पुराण में एक श्लोक है, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। जब एक सिंह अपना सिंहनाद करता है, गरजता है जंगल में, सब हिरण और खरगोश इत्यादि तेज से भाग जाते हैं वो जंगल में डर के मारे ऐसे। इसी तरह अगर कोई भक्त लोग साथ में आकर भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, गर्जना करेंगे, उससे उस वातावरण में जो भी अमंगल हो अशुभ चीज हो वो सब भाग जाते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर आप ट्यूबलाइट लगा जला दो तो तुरंत अंधेरा को मिटा देता है ना, ऐसे ही अशुभ चीजों को भगवान के ध्वनि शंख का ध्वनि मिटा दिया, हरिनाम भी ऐसे ही मिटाता है इत्यादि प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर तरीके से समझ आते हैं। तत्रोपनीत बलयो रवेर्द्वीपं जीवाद्रताः आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा। द्वारकावासी भागते हुए आए कृष्ण को देखकर, तो तब पूर्व श्लोक में भी बताया गया कि वर्त्र दर्शन लालसह, ऐसे बताया गया। लालसह का मतलब है एक आतुरता के साथ प्रजाहा सर्वा प्रत्युद्ययुः, सब प्रजा एकदम तेजी से भागते हुए आई अपने स्वामी को मिलने के लिए एक लालसा को हृदय में लेकर। अच्छा कृष्ण बाबा लौट आ गए क्या हमारे द्वारकाधीश, बहुत समय के बाद आए हैं वापस, हस्तिनापुर में पांडवों को मदद करने के लिए गए थे, हम लोग राह देखते रहते थे रोज, अभी उनके शंख का नाद सुनकर सब जग गए द्वारकावासी भागते हुए आए। देखिए इसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग दुनिया में भटक गए थे लेकिन गुरु जी आए हमारे जीवन में, वैष्णव लोग आए, उनकी ध्वनि सुनकर उनके महामंत्र का गाना सुनकर उनके प्रवचनों को सुनकर हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में जो आत्मा था, हम तो सुप्त अवस्था में थे, हम जग गए ना उसको सुनकर। इस तरह ध्वनि से ही इस दुनिया में किसी को जगा सकता है, इसलिए अलार्म क्लॉक जो होता है ना अलार्म, उसमें भी क्या करते हैं वो ध्वनि पैदा करता है ना, टनाट, वो भौतिक ध्वनि है। वो भौतिक ध्वनि से भौतिक व्यक्ति जो भौतिक तरीके से सो रहा है उसको भौतिक नींद से उठा सकते हैं आप। इसी तरह आध्यात्मिक ध्वनि से जो आत्मा सो रहा है सुप्त अवस्था में उसको जगा सकते हैं। और आध्यात्मिक ध्वनि क्या है? श्रीमद् भागवत और हरिनाम, ये दो चीज है। हरिनाम कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप कीजिए, गाइए, नहीं तो भागवत कथा का श्रवण कीजिए, धीरे धीरे हमारे सोई हुई आत्मा जग जाता है। कैसे हमको मालूम कि हम लोग जग रहे हैं? आप देखेंगे कि कृष्ण और आकर्षक रहेंगे हमारे लिए, कथा भी बहुत आकर्षक होगा, नाम लेने में रुचि होगा, भक्तों के संग में आने में बहुत परमानंद प्राप्त होगा। और साथ साथ पहले जो निम्न काम कर रहे थे, जैसे कुछ लोग मांस खाने वाले मांस छोड़ देंगे, शराब पीने वाले शराब छोड़ देंगे, सब अवगुण निकल जाएंगे, पवित्र गुण एक भक्त के शरीर में दिखाई देंगे इस तरह। तो इस तरह भय मिट गया द्वारका वासियों में, क्योंकि पहले उनके नाथ उनके स्वामी बाहर गए थे, वो लोग राह देख रहे थे। तो स्वामी आने के बाद जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को अगर माता पिता के साथ रहते समय उसको अभय प्राप्त होता है, कुछ डर नहीं है। अगर अकेला होगा, कुछ कुत्ता आ गया, कुछ बड़ा लारी आ गया, तो डरेगा वो बच्चा, लेकिन माँ बाप के साथ रहते समय कुछ डर नहीं है उसको। इसी तरह द्वारका वासियों ने अभय का अनुभव किया उनको देखकर। इधर बताया गया है कि सब लोग खाली हाथ के साथ नहीं आए, तत्रोपनीतो बलयो रवेर द्वीपमिवादृता आत्मा रामम पूर्ण कामम निजलाभेन नित्यता। इधर बताया गया कि वो लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार वो लोगों ने कुछ ना कुछ भेंट लेके आए था। अगर कोई टेक्सटाइल दुकान का हो, कुछ कपड़ा लेके आया होगा, कुछ कंबल लेके आया होगा, कोई सोना चांदी का दुकान का हो, कुछ भगवान के लिए अंगूठी भगवान की नेकलेस कुछ लाया होगा वो, हाँ। अगर कोई फल का दुकान हो उसके पास, कुछ फल लेके आया होगा वो, हाँ। इस तरह है। तो अपने अपने क्षमता के अनुसार उनके पास जो भी था भगवान को देने के लिए उन्होंने सबसे बेस्ट चीज अपने पास रखा था उसको लेके आए लोग, हाँ। और देते समय लोगों ने द्वारकावासियों ने बोला भगवान को कि रवेर द्वीपम विवादृता है। उनको लगा कि भगवान तो आत्माराम है, आत्माराम का मतलब उनके लिए कुछ चीजों की मांग ही नहीं होता उनके हृदय में, हमेशा तृप्त है वो। और आपका काम का मतलब है जिसके अंदर अगर कुछ इच्छा पैदा हो तो तुरंत तत्क्षण पूर्ति हो जाता है वो आपका काम है वो, उसके उसके लिए इंतजार भी नहीं करना होता है, इच्छा करते ही पूर्ति हो जाता है। क्योंकि भगवान की अनेक शक्तियां ना, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, संदिनी शक्ति, संबित शक्ति, ख्लादिनी शक्ति, इस तरह बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां है ना। इस तरह विभूति शक्ति, संकल्प शक्ति, कृपा शक्ति, ऐसे अनेक शक्तियां भगवान के पास, सब शक्तियां भगवान के इर्द गिर्द रहते हैं, सलाम मारकर सेवा देते हैं उनको। इसलिए अगर भगवान के हृदय में कुछ इच्छा पैदा हो तत्क्षण पूर्ति हो जाता है वो, उनके लिए इंतजार नहीं करना होता। इसलिए लोगों ने बोला कि हम क्या दे सकते हैं आपको भगवान, तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते भी हैं, अरे भगवान इस दुनिया में भगवान ने तो सब कुछ दिया है हमको, हम क्या दे सकते हैं उनको। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पूछ रहे थे, अगर किसी ने आपको कुछ नहीं दिया उसको दोगे क्या आप, इस दुनिया में आपका अनुभव है कि अगर किसी ने आपको कुछ किया है तो आप कृतज्ञ होकर उसको कुछ करते हैं ना। जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं, बड़ा होने के बाद बच्चे को भी लगता है कि माँ बाप ने हमको छोटे से इतना बड़ा किया है, कितना अच्छा पालन पोषण किया है, कुछ ना कुछ करना चाहिए हमको माता पिता के लिए, अच्छा घर बांध कर रखते हैं उनको, उनको अच्छा अच्छा रखते हैं कि नहीं बच्चे। क्योंकि इस तरह कृतज्ञता तब पैदा होता है हमारे हृदय में अगर किसी ने हमको कुछ किया हुआ तो, तब हम तुरंत उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे माँ बाप को करते हैं, मित्र को करते हैं। ऐसे इसी तरह भगवान से हम इतना कुछ लिया है, सूर्य की ताप, चंद्रमा की रोशनी, बारिश, धान्य, फल फूल इत्यादि, और हवा, और बारिश जो पीने का पानी, सब कुछ लिया है हमने भगवान से। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों से रंग बिरंगे सुगंधी फूल, और अलग अलग पेड़ों से अलग अलग फल। इसके साथ साथ भगवान ने अनेक प्राणियों को भी सृष्टि किया है, जैसे गाय दूध देती है हमको, घोड़ा सवारी के लिए लेके जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमको नहीं प्राप्त हुआ इस दुनिया में, इतने प्रदान किया है भगवान ने, हमने लिया है बहुत कुछ। अंग्रेजी में कहा होता है गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट गेट एंड फॉरगेट, ऐसा बताया है। हमें भूलना नहीं चाहिए भगवान की भेंटों को, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इसलिए ये लोग जानते हैं द्वारकावासी महान भक्त है, भगवान को भेंट देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये नम्र होने के कारण ये लोग बोल रहे हैं कि हम क्या दे सकते हैं आपको भेंट, हम जो भी दे रहे हैं ये सूर्य के सामने एक दिया जलाने के बराबर है, ऐसे बताते हैं। अरे सूर्य में इतना रोशनी भरा पड़ा है, हमारे दिया से क्या होने वाला है इसको। जैसे मान लीजिए अगर किसी का कोई व्यक्ति है सीमा बल्ब कंपनी का ओनर है, वो ट्यूबलाइट कंपनी का ओनर है, उसके पास करोड़ों ट्यूबलाइट बिकता है, आप उसके घर में जाकर एक ट्यूबलाइट खरीद कर उसको बेंट में दोगे आप, वो हंसेगा कि नहीं है? वो बोलेगा कि देखो मेरे पास ट्यूबलाइट कंपनी है, इतना बड़ा पड़ा है, आप और एक ट्यूबलाइट दे रहे हो आप है? इसी तरह ये लोग बोल रहे हैं हम क्या दे सकते हैं आपको, फिर भी देने की इच्छा हो रहा है हमारे मन में, तो आप कृपया स्वीकारिए, इस तरह बोलकर वो लोग बेंट दे रहे हैं। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारमि वार्बकाः। इधर बता रहे हैं कि प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचुर, और एक ओके सब स्वागत का फोटो है, बहुत बड़ा क्राउड देख रहे हैं आप इस फोटो में, इसी तरह है जब भगवान आप देख रहे हैं इधर फोटो में ऊपर राइट टॉप राइट में भगवान द्वारकाधीश प्रवेश कर रहे हैं, अनेक लोग उनको चामर डुला रहे हैं, बैंड वाद्य बज रहा है, ऐसे हजारों नागरिक प्रजा आए डमर बजाते हुए, अलग अलग वाद्यों का भी बजाते हुए भगवान को स्वागत करने के लिए, बैंड बज रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, और सब लोग आकर अपने अपने भेंट भी दे रहे थे भगवान को। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्व सहृदम सुहृदम अवितारमिव अर्बकाः। इधर बताते हैं कि लोगों में क्या दिखाई दिया, सुखदेव वो समय देख रहे हैं कि वो लोगों के भगवान के शुद्ध भक्त थे ना सब द्वारकावासी, इसलिए प्रीति उत्फुल्ल मुखा उनके मुख जो है जैसे कमल जब सुबह खिल उठता है, इसी तरह उनके मुखारविंदों में भी उनके मुख कमल जो था वो खिल उठाता है, मुस्कुरा रहे थे सब लोग प्रेम से। हर्ष गदगदया गिरा, इतने वो लोगों के अंदर भगवान को देखकर प्रीति जग गया था, प्रेम जग गया था कि वो लोग ठीक तरह से बोल नहीं पाए भगवान को, गदगद हो रहा था उनके। जैसे अगर आप देखते हैं माता पिता कभी कभी बच्चे को देखते हैं, 2 साल तक अमेरिका में भी वापस लौट आया है, एयरपोर्ट में जाते हैं उसको स्वागत करने के लिए, जब बेटे को लेके जाते हैं गदगद हो जाते हैं ना, कभी रोते भी हैं, आलिंगन देते हैं, चुंबन देते हैं, इस तरह भगवान को स्वागत करते समय लोगों के गदगद हो रहा था। पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्बकाः, जैसे बच्चे अपने बाप को मिलते हैं बहुत समय के बाद, किस तरह प्रेम से बाग कर उनको आलिंगन करेंगे, इसी तरह द्वारकावासी सब भगवान के साथ व्यवहार किया, इसे बताया गया है। ऐसे मुझे देखने को मिला एक बार एयरपोर्ट में, एक छोटा लड़का, छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ की गोद में था, दोनों इंतजार कर रहे थे, तो उसका पिता कहीं से तो फॉरेन से आ रहे थे बहुत महीनों के बाद, तो पिताजी को देखते ही नीचे कूद गया, दौड़ते हुए अंदर गया, तो एयरपोर्ट के कुछ अथॉरिटीज ने बोला अंदर मत छोड़ो इसको, बच्चे को, लेकिन वो सुना नहीं किसी का, भागते हुए गया, तो एयरपोर्ट के एक बड़े अथॉरिटी थे, उन्होंने बोला कि छोड़ दो, छोटा बच्चा है, पिताजी को मिलना चाहता है, छोड़ दो। तो इतना प्रेम से अपने पिताजी को मिला, उनके पांव को आलिंगन किया, पिताजी ने उठा लिया उनको अपने गोद में। तो हमने जब देखा उस बच्चे को, पिता को, तुरंत हमें ये बात स्मरण आया कि किस तरह इधर वही बताया गया, पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्बकाः, ऐसे बताते हैं, जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने रक्षक, अपने भर्ता, अपने पिता इनसे आकर्षित होकर वो भागेगा अगर बहुत समय के बाद मिलता हो, इस तरह द्वारकावासी भाग रहे थे भगवान की ओर, और मुस्कुराते हुए प्रेम से वो लोग विविध भेंट अर्पण कर रहे थे, ऐसे बताया है। नदास्पते नाथ सदांग्रिपंकजं विरिंच वैरिंच सुरेन्द्र वंदितं परायणम क्षेम इच्छताम परम न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। बताते हैं कि पढ़िए छठा।
नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता।
अंग्रि पंकजम, आपके श्री चरण को सदा हम लोग झुकते हैं, हम पूजा करते हैं। आप ही सबके लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो, प्रातः स्मरणीय हो। जैसे विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, विरिंच का मतलब ब्रह्मा, वैरिंच का मतलब ब्रह्मा के पुत्र कौन, चतुष्कुमार। सुर इंद्र का मतलब है सब देवताओं के भी राजा इंद्र इत्यादि। वंदितम, आपको वंदना करते हैं, सर झुकते हैं आपके श्री चरणों में। आप इतने महान हो, सब देवी देवता आते हैं द्वारका में आपको मिलने के लिए, आपको दंडवत करने के लिए, आपकी गुणगान करने के लिए। तो हम भी उसी चरणों में हम भी झुकते हैं। परायणम क्षेम इहेच्छताम परम, कुछ लोग आपसे प्रार्थना करके उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और आप ऐसे व्यक्ति हो भगवान, आप काल के प्रभाव में कभी नहीं आते हो। अगर आपका उम्र 100 हो, 200 हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमेशा आप 16 उम्र के दिखते हो आप। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, आप पुराण पुरुष हो, आदि पुरुष हो, फिर भी आप हमेशा नवयौवन अवस्था में रहते हो आप। इस तरह सब लोगों को उनकी इच्छा अनुसार आप वरदान प्रदान करने के लिए आप सक्षम हो, इसलिए आपका एक नाम है वरदराज। कोई चाहता है स्वर्ग लोग जाने के लिए, चलो स्वर्ग जाओ। कोई चाहता है मोक्ष, चाहता है मोक्ष। किसी को सिद्धियां चाहिए, ठीक है सिद्धि लेकर जाओ, आप तो योगेश्वर हैं, दे सकते हैं उसको। कोई सब तकलीफों से निवारण चाहता है, ठीक है निवारण लो। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपकी सान्निध्यता, आपके श्री चरणों की सेवा, ये ही मांगेंगे आपसे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस तरह आपके साथ इधर हम द्वारका में रहते हुए, आपकी मुख कमल को देखते हुए हम लोग रहते हैं। और आप देवताओं के लिए भी, देवता लोग भी आपको झुकते हैं, ब्रह्मा शिव जी कुमार इत्यादि लोग भी। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली क्योंकि हमारे साथ आप रहते हो। भवायनस्तम भव विश्व भावन त्वमेव माता सुहृत पति पिता त्वाम सद्गुरुर्न परमं च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। बोलते हैं कि कितना सुंदर दुनिया बनाया आपने, क्या गया था, ठीक है। बोलते हैं कि सुबह हम लोग जगते हैं सूर्य को देखकर, रात को हम लोग सोने जाते हैं चंद्रमा को देखकर। और इस दुनिया में क्या क्या बनाया आपने, धान्य बनाया है, फल बनाया है, फूल बनाया है, बारिश रखा है, सब सुख सुविधा इतना बहुत भरपूर बनाकर रखा है, प्रचुर मात्रा में सब जीवों के लिए। मूर्ख जीव एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और कभी कभी कुछ सामग्री को इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं सब कुछ जीव, जैसे जमीन को भी घेर लेते हैं आस्तरी प्रवृत्ति के कारण, बाकी जीवों को सताते हैं। लेकिन भगवान आपने दुनिया ऐसे बनाए हैं, सब आपके ही बच्चे हैं सब जीव, सबकी भलाई के लिए आपने सब सुख सुविधा दिया है। इन सुख सुविधाओं को हम लोग स्वीकार करके अच्छा चीज खा सकते हैं, जैसे शाकाहारी भोजन आपको भोग चढ़ाकर प्रसाद खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सरल जीवन ऊंचा विचार हम रह सकते हैं उसके साथ। और हम आपकी भक्ति करके आपके धाम में आ सकते हैं, कितना आसान मार्ग है वो। इसको छोड़कर मूर्ख जीव समझते नहीं कि आपने दुनिया कितना अच्छा बनाए हैं, तो वो लोग इसका दुष्प्रयोग करते हैं। ये बताते हैं कि भवायनस्तम भव विश्व भावना त्वमेव माता सुहृत पति पिता, आप ही हमारे माता हो, आप ही सुहृत हो। सुहृत का मतलब हृदय पूर्वक, हृदय हमारे हृदय स्पर्शी मित्र। और इस दुनिया में मित्र होते हैं, बंधु होते हैं। मित्र का मतलब सामाजिक, कोई निकट कोई व्यक्ति हो ऐसे सामाजिक तौर पर। और बंधु का मतलब है जो ब्लड रिलेटिव्स बोलते हैं, आपके माता पिता भाई बंधु, दोनों से बढ़कर जो सुहृत होते हैं वो आपके हृदय हृदय में अंतरामी के रूप में बैठे हैं भगवान, वो हमारे शुभ चिंतक है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु के बाद कोई नहीं आएगा हमारे साथ, सिर्फ परमात्मा आते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े सुहृत है, सुहृदम सर्वभूतानाम ऐसे। और आप पिता भी हैं हमारे लिए, आप ही हमारे सदगुरु भी हैं आप, और परम देवता है हमारे लिए। और लास्ट में बताते हैं, यस्यानुवृत्या कृतिनो बभूविम, आपके अनुगामी बनकर हमारे जीवन मंगलमय हो गया है, कल्याण से भर गया है। और हम हमको इस बात पर अटूट विश्वास आ गया है कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे, अगर वो आप जो बोलते हैं वो करते हैं हम लोग, तब हम मंगलमय जीवन को प्राप्त किया हमने। और ये सत्य बात है। क्यों? आप लोग जानते हैं कृष्ण भावनामृत में भी जब प्रभुपाद जी ने संस्था शुरू की थी तब हिप्पी लोग किस किस गंदे गंदे आदतों में फंसे थे वो, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब हरिनाम दिया, उनको भक्ति मार्ग में जोड़ा, वो लोग सिर्फ प्रसाद ही खाते थे बाकी कुछ नहीं, तिलक पहनना, कंठीमाला पहनना, नाम जपना और शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊंचा विचार, इतना बड़ा परिवर्तन आया उनमें। कैसे भगवान के अनुगामी बनकर हम लोगों ने भी अपने जीवन में भी बहुत लाभ पाया है। हम आप देख सकते हैं कि शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर एक जीव को परम कल्याण प्राप्त होता है भक्ति मार्ग के द्वारा। हम अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, एक सब भक्त लोग एक दूसरे को आदर पूर्वक आदर सम्मान देते हैं, इस तरह सब लोग प्रेम से डीलिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है ऐसे, और अच्छे ऐसे ऐसे उत्सव मनाते हैं बढ़िया भगवान के लिए। तो भक्ति मार्ग में क्या नहीं है आप बोलिए, सब कुछ है। और इस तरह आत्मा के पोषण के लिए भी अनेक चीजें हैं, जैसे शास्त्र का श्रवण, हरिनाम का जप इत्यादि। और हम अंतिम काल में भगवान का स्मरण करते हुए उनके धाम में चले जाएंगे, वो जिधर यही चीज हमें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आप आपके अनुगामी बनकर हम कल्याण प्राप्त किया, ऐसे बताते हैं। अहो सनाता भवतास्मयद्वयम् त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम्। देखिए बोल रहे हैं, अहो सनाता भवतास्मयद्वयम्, हम लोग अनाथ नहीं हैं, क्यों? हमारे लिए आप जैसे अच्छे अच्छे नाथ मिल गए हैं हमको, ऐसे बता रहे हैं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, अनाथ है, सनाथ है। कभी कभी आप देखते हैं कुत्ता सड़क में, गली का कुत्ता होता है ना, उसके कोई नाथ नहीं होते हैं, अनाथ कुत्ता है, तो म्युनिसिपैलिटी के लोग पकड़ कर लेके जाते हैं, उसको मारते हैं, पिटाई करते हैं। लेकिन कुछ कुछ कुत्ते होते हैं जो मालिक के घर में रहते हैं, वो बड़े कार में भी जाते हैं, मालिक उनके लिए अच्छा अच्छा बिस्कुट खिलाते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये अनाथ होकर जीव इस दुनिया में भटक रहे हैं, किसी का बात ना मानकर मनमानी करते हुए। लेकिन भक्ति मार्ग में हम अगर हम आ जाते हैं, गुरु की बात मानते हैं, वैष्णव की बात मानते हैं, और अंततोगत्वा भगवान की भी बात मानते हैं, कृष्ये वचनम तब, तो तब हम अनाथ नहीं रहेंगे, हम सनात हो जाते हैं, भगवान के लिए ही हम कार्य करेंगे, भगवान का ही गाना गाएंगे, भगवान का ही दर्शन करेंगे, भगवान का ही प्रसाद पाएंगे, भगवान के भक्तों के साथ ही हम संग करेंगे। और इस तरह हम कुकर्म में कभी नहीं फंसेंगे, इस तरह हम भगवान के हो जाना चाहिए। अगर हम भगवान के हो जाते हैं तो हम अनाथ नहीं रहेंगे, कभी भी सनात हो जाएंगे, कभी भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे हृदय में ही हमारे परम मित्र परम भगवान कृष्ण खड़े हैं अंतरामी के रूप में। तो हम अकेलापन कैसे महसूस कर सकते हैं? अकेलापन तब महसूस होता है जब हम मनमानी करते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं। तो भगवान के दिए हुए पथ में चलते हैं, जैसे भगवान बताते हैं ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, तो हमारे जीवन यशस्वी हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, और एक बात बोल रहे हैं इधर ये लोग, त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम्। देखिए अगर देवता लोग आपको देखना चाहते हो तो वो लोगों को ब्रह्मा ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्मा को भी लेके जाकर दुग्ध सागर में जाना पड़ेगा। दुग्ध सागर के किनारे में सब देवता अपने कुटियों में खड़े होकर हाथ जोड़कर कृतांजलि मुद्रा में आपको विविध तरह के संस्कृति में प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, लेकिन आप वो समुद्र दुग्ध सागर के अंदर आप बहुत दूर में लेटे हो ये अनंत शेष में है, तो ये लोग देख नहीं पाएंगे आपको ठीक तरह से, आपके शरीर से प्रकाश निकलता है। तो ये त्रैविष्ट पानाम अपनी दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब वो दूर से आपको देखते हैं, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, आप हमारे बीच में जीते हैं, इतने निकट हम देख पा रहे हैं आपको, ऐसे बोल रहे हैं वो है? वो द्वारकावासी है? इतना ही नहीं, हम देख भी पा रहे हैं आपको, साथ साथ प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम बताते हैं, आप हमेशा प्रेम के साथ मुस्कुराते हो है? और आपकी दृष्टिपात जो होता है उसमें भी इतना मधुरिमा है, स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है जैसे अगर आंखों में अगर पानी हो तो स्निग्ध दिखता है, गीला ऐसे, तो ऐसे एक प्रेममय आंखों के साथ हमारा अवलोकन करते हो आप, मुस्कुराते भी हो, पश्येम रूपम तब सर्व सौभगम, ये जो सुंदर स्वरूप है द्वारकाधीश का, जो सब तरह के कल्याण को प्रदान करने वाले शरीर होता है आपके दिव्य शरीर, इसको हम इतने निकट देख पा रहे हैं जो देवता के लिए भी, देवताओं के लिए भी अप्राप्य है, लेकिन हमको आप प्राप्त हुए हैं, और इसलिए हम लोग अनाथ नहीं, हम सनात बन गए हैं अपने जीवन में, ऐसे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमको अपने ही द्वारका में रखा है, इसके कारण हम आपको रोज देख पाते हैं, क्योंकि भगवान जब सड़क में एक महल से बाहर आते थे, दूसरे महल से भी बाहर आते थे, तो गली के अंत तक जब भगवान जाते थे, गली के अंत में सब रूप एक हो जाते थे, उसके बाद ऐसे आगे जाकर अपने महल में जब जाते थे ना, उधर जाने के बाद एक ही कृष्ण महल में प्रवेश करते थे, और शाम को आते आते समय एक कृष्ण विस्तारित होकर एक एक घर में चले जाते थे ऐसे, उस समय अनेक लोग स्त्रियां जो बहुत सभ्य घरों में जन्मी स्त्रियां जो है वो महल के ऊपर जाती थी, भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करती थी, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया पुरस्त्रियः हर्म्यानि आरुरुहुर् विप्रा उत्तम श्लोक चेतसाम, बताया गया कि उत्तम श्लोक लालसः, ये जो स्त्रियां ऊपर गई थी ऊपर से फूल की वर्षा करती थी, नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न अभितृप्यन्ति हीदृशः श्रीयोधामाङ्गमच्युतम्, ऐसे बताया गया कि नित्यम निरीक्षमाणानां, सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आते थे भगवान को देखने के लिए, जब सड़क में भगवान चलते हैं उनको देखने के लिए राजमार्ग में, जैसे मैंने पूर्व फोटो में दिखाया आपको, भगवान जब चलते हैं उनको देखने के लिए आते थे लोग, रोज भी देखते थे उनको, लेकिन कभी थकते नहीं थे उनको देखकर, ऐसा नहीं लगता था अरे बहुत बार देख लिया, ऐसा नहीं। इसी तरह इस्कॉन के मंदिरों में भी भगवान के श्री विग्रह को सजाया जाता है अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग आभूषणों से, तो रोज भक्त लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, श्रृंगार दर्शन 7:30 बजे हमारे मंदिर में, तो हम क्यों रोज देखना चाहते हैं आज क्या कपड़ा पहने हैं भगवान, किस तरह का स्टाइल में पहने हैं, किस तरह का आभूषण पहने हैं, कभी कभी भगवान के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है, तो हम लोग इस तरह भगवान की श्री विग्रह के रूप को देखकर प्रार्थना करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। इस दुनिया में जो भौतिक पदार्थों से बनाया हुआ ये बदबू निकालने वाली भौतिक शरीर जो है, हम उससे आकर्षित कभी नहीं होंगे। यह तो ये लोगों का परम सौभाग्य था कि रोज वो देखते थे कृष्ण को, नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशः, कभी ऊब नहीं गए, कभी दिन ब दिन देखते गए, कभी भगवान को जितना भी देखो और भी देखने की इच्छा ही होता है। ऐसे जैसे आप प्रसाद खाते हैं, आप नहीं बोलते कि कल खा लिया, ऐसे नहीं, आज प्रसाद है तो और भी खाएंगे ना प्रसाद आप, इस तरह आप देखेंगे कि भगवान को देखने से और देखने की इच्छा होता है ऐसे, और चित्त में एक व्यवसायत्मक बुद्धि आ जाता है, मुनु को ही देखने की इच्छा, बाकी किसी और चीज को नहीं देखेंगे हम, इस तरह 10वां श्लोक में बोल रहे हैं, कतम वयम नात चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अकिलता पशोषणम जीवे मते सुंदरः सशोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम। पढ़िए दसवां।
हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है।
अपश्यमाना वदनम मनोहरम,
भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया।
यदि चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरम्। बताते हैं कि इस तरह के मधुर वचन अपने ही प्रजा का, इसलिए हम लोग घर में भी किसी मेहमान को स्वागत करते तो मीठे मीठे बोलना चाहिए, कोयल जैसे और मोर जैसे नाच कर हम स्वागत करते हैं सन्यासियों को, महात्मा पुरुषों को, भगवान को भी ऐसे है। हमें मोर जैसे नाचना चाहिए, कोयल जैसे कुहू करना चाहिए है स्वागत करते समय। तो इस तरह ये लोगों ने बहुत मीठे तरीके से बोलकर भगवान को भेंट इत्यादि देकर भगवान के साथ साथ चलते हुए आए है। इस तरह तो भगवान ने प्रवेश किया द्वारका के अंदर, ऐसे बताते हैं। अगले और एक ये पढ़ लीजिए, 11वां अनुवाद।
जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों भोज मधु दशारह अरह कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी।
और 12वां श्लोक इधर बताया गया, द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से संपूर्ण थी। आप इधर पिक्चर में देखिए, आप दिखा रहे हैं ना, देखिए कृष्ण चलते हुए आ रहे हैं, दोनों बाजू में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। और घर के बाहर लोगों ने दिया जलाया है भगवान को स्वागत करने के लिए है, और कलश रखा है भगवान के श्री चरणों में पानी डालने के लिए, और घर को एकदम साफ सुथरा रखकर रंगोली भी बनाकर रखा है भगवान को स्वागत करने के लिए। और इधर 12वां पढ़िए अनुवाद।
द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी, उसमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे।
प्रभा जी तात्र में 3-4 लाइन पढ़िए पहले।
मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है, जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है। उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है।
मिल नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थे, कतलखाना नहीं थे, शराब की दुकान नहीं थे। तो इस तरह बता रहे हैं कि गुणगान कर रहे हैं द्वारका कैसा था, कितना सुंदर था, ऐसे बता रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं, गोपुर द्वार मार्गे शुकृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रय अंत प्रतिहतात्म अंत प्रति हतातपाम।
भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारों झंडियों से सजे बंदरवार
झंडे थे, झंडे
बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे
तोरण, उसे तोरण बनाया था आम के पत्तों से,
मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडिया फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे।
आजकल लोग बलून लगा देते हैं, नहीं तो प्लास्टिक से बनाया हुआ फूल जो है उसको, इसके लिए कुछ लोग ऑर्डर कर दो पंडाल वालों को, वो लोग लगा देते हैं ना आजकल है? प्लास्टिक से बनाया हुआ फूल, असल फूल जैसे दिखता है लेकिन प्लास्टिक में बनाया हुआ, सुगंध नहीं है उसमें है? तो लेकिन उधर आप देखेंगे भगवान के समय में इतने फूल बनाया और फूलों से सजाया गया था, तोरणों से, बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो आगे 14वां।
पथ मार्गों बाजारों तथा चौकों को बलिभांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का जा गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे।
आगे 15वां श्लोक बता रहे हैं। द्वार द्वार गृहाणां च दद्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्ण कुंभैर बलिभिर् धूप दीपकैः।
प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी।
इस तरह भगवान का स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये स्वागत करने का तरीका है, ये बता रहे हैं। जैसे रंगनाथ मंदिर में दक्षिण भारत में मैंने देखा है, सुबह 5 बजे भगवान का जो मंगल आरती चालू होने के पहले एक गाय और एक हाथी दोनों को लाते थे भगवान के आल्टर के सामने, गर्भगृह के सामने रखते थे। तब शंख बजने के पहले ये हाथी अपने सूंड को उठाकर रंगा ऐसे बुलाता है, तो उसके बाद दरवाजा खुलता है, रंगनाथ दर्शन देते हैं। वो बुलाता है, रंगा बुलाता है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया है उसको हर दिन सुबह। इस तरह गाय भी स्वागत करती है भगवान को, उसके बाद दर्शन खुलता है ऐसे। इस तरह आप देखेंगे भगवान के लिए जो जब उत्सव करते हैं उसमें उनको भगवान को पूरा प्रदक्षिण मार्ग में लेके जाते हैं, बाहर भी उनको जमीन दिखाते हैं, उनको मंदिर के जितना कमाई आया है भगवान की सेवा के लिए वो सब अनाउंस करते हैं भगवान को। इस तरह के बता रहे हैं कि इधर भगवान को स्वागत करने का तरीका होता है, किस तरह स्वागत किया गया, बहुत सुंदर तरीके से इस तरह द्वारकावासियों ने किया। और आगे के श्लोक में 16वां श्लोक में बताया कि कौन कौन भागते हुए आए भगवान की राह, भगवान को भगवान के आने का संदेश मिल गया, कौन कौन भागते हुए आए, पढ़िए।
यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया।
देखिए सब बड़े बड़े योद्धा हैं, उसमें क्या नाम है, बलराम है, उसमें अक्रूर है, उग्रसेन है, वसुदेव है, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांब सब यदुकुल के हैं, सब महान योद्धा, सब भागते हुए आए और सब लोग अपना खाना पीना छोड़ दिया, बहुत खुश होकर। अगर कोई कह रहा था तो ऐसे ही प्लेट डालकर हाथ धोकर भागते हुए आ गया ऐसे, कोई लेटा हुआ सो रहा हो तो उठ गया, भागते हुए ऐसे ही आ गए ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है भगवान को ये लोग कितने प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। बाकी कुछ चीज आवश्यक नहीं है उनके लिए अभी, तो भगवान को अभी मिलना चाहिए उनको, इसलिए उसको प्रधान्यता देते हुए भागते हुए आए वो। आगे 18 है, वहां में बताया है, पढ़िए।
वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े, उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया।
तो इस तरह भागते हुए आए वो। तो आगे के श्लोक में बताया गया कि इसके साथ साथ अनेक वेश्या भी आई थी उधर अपने अपने वाहन में, तो भगवान के सुंदर रूप देखकर उनके सुंदर ये बता रहे हैं कि भगवान को मिलने के लिए, और वो सब वेश्या कुंडल पहना था, वो भी अच्छे अच्छे कर्ण कुंडल पहनी थी उधर आई थी। तो उधर वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई पूछेगा कि इस तरह की वेश्याएं के बारे में बात आ रहा है, वो क्यों आई थी, ये क्या बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस जमाने में कुछ कुछ स्त्रियां इस तरह की वेश्या थी उस समाज में, उसका कारण क्या है। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर रहता है ना सिनेमा थिएटर में, अगर आग अचानक जलता हो तो तुरंत वो आग बुझाने वाले पदार्थ को लेकर उसको बुझा देते हैं। इस तरह समाज में कभी कभी कुछ लोग होते थे जो जैसे सेठ जी लोग, कुछ धनी लोग, पैसे वाले लोग, कभी कभी वो कामुक होते हैं, अगर उनकी काम की तृप्ति नहीं हुआ उनके पत्नी से तो किसी भी परस्त्री को उठाकर उनको दूषित कर देते हैं, इस तरह समाज में वर्ण संकर बढ़ जाता है। इसलिए उस जमाने में कुछ लोग थी, वेश्याएं थी समाज में, अगर इन लोगों को इस तरह का काम क्रियाओं को करना हो तो वो शहर के बाहर जाकर इस तरह उसको मिलते थे ऐसे। तो ऐसे कुछ व्यवस्था था, कुछ कुछ वेश्याएं थी, सिर्फ वो गाती थी, नाचती थी, कुछ वेश्याएं, कुछ वेश्याओं के साथ ये जो धनी लोग, कुछ कुछ लोग ऐसे उनके दुर्व्यवहार हो सकता था ऐसे, क्योंकि ये लोग पैसे के दुष्प्रयोग करने वाले ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, अगर इस तरह की वेश्याएं नहीं हो समाज में, तो बाकी अच्छे कुल में जन्म में स्त्रियों को ये लोग दूषित कर सकते थे, इसलिए इस तरह का व्यवस्था था उस जमाने में। ऐसे प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में बताते हैं इधर। तो आगे बताया गया 20वां श्लोक में, नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागत बंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। पढ़िए अनुवाद।
कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए।
करेक्ट। अब नर्तक, नट नर्तक गंधर्व, गंधर्व लोगों ने गाया, नर्तक लोगों ने नाचा, नाट्य करने वाले लोग, नाटक करने वाले लोग नाटक किया उन्होंने, और कुछ लोग भगवान की गुणगान किया, उनकी वंशावली के बारे में बोलकर ऐसे, और सब लोगों को भेंट दिया गया, कुछ दान भी दिया गया ऐसे। तो वैदिक संस्कृति में इस तरह एक राजा आ रहा है, उनको स्वागत करने वाले, गुणगान करके उनको पैसा भी दिया जाता है उनको, इन लोगों को। लेकिन इससे क्या होता था राजाओं का, राजाओं के अंदर दान करने की प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि बढ़ जाता था इस तरह की गुणगान से। भगवान के लिए कर रहे हैं लोग, कभी कभी राजा को भी करते थे इस तरह के लोग। एक आदर्श राजा हो तो उसके आदर्श गुणों की गुणावली करते थे वो लोग, गाना करते थे ऐसे। इससे क्या होता था, राजा के अंदर एक प्रेरणा मिलता था कि मैं धार्मिक बनकर रहूंगा। तो ये लोगों ने मेरे गुणगान किया कि मैंने मंदिर बांधा है भगवान के लिए, धार्मिक कार्यों को करने के लिए ब्राह्मणों को सुख सुविधा प्रदान किया है। तो इसलिए वो राजा लोग प्रेरणा लेते थे इस तरह के गायकों से, अपने जीवन में धार्मिक बनकर सेवाएं करने के लिए। भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे।
भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया।
यथा योग्य, जैसे बलराम को आलिंगन किया होगा भगवान ने, और इस तरह अलग अलग लोग जब आए भगवान को मिलने के लिए, उनके सामाजिक स्थिति के अनुसार भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया। किसी को देखकर मुस्कुराते थे, किसी को निहार अपने आंखों से देखते थे, किसी को देखकर हाथ ऐसे हिलाते थे, किसी को देखकर मुस्कुराते थे, किसी को आलिंगन देते थे। अलग अलग स्थिति के लोगों को अलग अलग तरीके से भगवान ने आदान प्रदान किया उनके साथ। आगे बताते हैं 22वां श्लोक बताते हैं, पढ़िए अनुवाद।
सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया।
किसी को वरदान दिया, किसी को आश्वासन दिया, किसी के ऊपर मुस्कराया, इस तरह विविध तरीके से भगवान ने आदान प्रदान किया। तो ये श्लोक जो आ रहे हैं 23 से 27 में, पहले से बोल दिया मैंने आपको। तो इधर जो राजमार्गम कथे कृष्ण 24वां 25वां, अभी मैं उसको पहले से बोल दिया, अभी 36। श्रीयो निवासो यस्योरह पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम। ये सब बताया गया कि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल में निवास करती है, और भगवान के भुजाएं जो होते हैं वो देवता जैसे हैं, और भगवान के श्री चरणों में जो वो कमल के बराबर है, इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त उनके श्री चरणों में रहते हैं, और देवता लोग उनकी भुजाओं में। क्यों? उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, शासन करना है इस दुनिया के, इसलिए वो लोग कंधे में लोकपाल वगैरह जैसे कुबेर, यमा, इंद्रा इत्यादि लोग हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को कुछ नहीं है, वो उनके श्री चरणों में रहते हैं, भ्रमर जैसे उनके श्री चरण की कमलों में गूंजते रहते हैं, ऐसे बताया गया है। इसे भगवान के सुंदर चेहरे का वर्णन है इधर, ऐसे। तो इधर एक उपमा दिया है 27, डोंट रीड द ट्रांसलेशन, रीड द परपोर्ट 27।
सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादलों हो तो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है।
सुंदर वर्णन है, जैसे भगवान के जो पीताम्बर है। तो इधर उदाहरण देते हैं, जो चामर डुला रहे थे वो चंद्रमा जैसे थे, करेक्ट है ना। तो छतरी जो था सूर्य जैसा था, और फूल जो गिर रहे थे तारे जैसे गिर रहे थे, इस तरह। तो ये साथ में होना मुश्किल है, लेकिन भगवान के संपर्क में, भगवान के संबंध में कुछ भी हो सकता है, इसे एक उपमा दे रहे हैं सुंदर। तो आज का प्रवचन इधर मैं विराम देता हूँ, थोड़ा बहुत बचा है, एक सेक्शन बचा है जिसको अगले सत्र के साथ हम पूरा करेंगे, जिसमें भगवान अपने महल में आकर रानियों को मिलते हैं। तो उस पार्ट को अगली बार हम कवर करेंगे उसको। भक्तों द्वारा भगवान के हृदय में आकर्षण आकर्षित करने का एकमात्र तरीका सेवा भाव। जैसे एक छोटा लड़का छतरी पकड़ रहा है विट्ठल के ऊपर, क्योंकि बारिश आ रहा है, ऐसे भगवान का व्यवहार अपने रानियों के साथ। ये अगली बार इधर से हम चालू करते हैं, ये 10-15 मिनट में होगा अगले बार, और उसके आगे का 12वां अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। 12वां अध्याय छोटा है इसलिए इसको उसके साथ ले लेंगे। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच।